जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि पाद परमहंस परिव्राज काचार्य श्रोतर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् श्री गुरु पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांस साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बेलगाम में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के उपलक्ष में पहले दो तीन दिन जगन्नाथ कथा होती है, तो आज और आने वाले एक दो दिनों में मैं ऐसे कोई कथाएं सुनाना चाहूंगा जो भगवान जगन्नाथ से संबंधित हैं, परंतु जिन विग्रहों की स्थापना बाद में जगन्नाथपुरी के बाहर हुई है और जो बहुत प्रसिद्ध जगन्नाथ भगवान की विग्रह है। तो सबसे पहले मैं जगदीश पंडित के द्वारा आकर्षित किए भगवान जगन्नाथ के विग्रह की चर्चा करना चाहूंगा। आपने अवश्य जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित का नाम सुना होगा। वो भगवान जगन्नाथ भक्षी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। वैसे जगदीश पंडित पहले गौहाटी में रहते थे, आसाम में। इसका पुराना नाम है प्राग ज्योतिषपुर। उनके पिता थे कमलाक्ष पंडित। तो जगदीश पंडित के माता पिता के देहांत होने के बाद में जगदीश पंडित अपनी पत्नी जिनका नाम था दुखिनी, वो उनके साथ में लेकर यहां मायापुर में आए। गंगा के तट पर वो बसे और उनका घर बिल्कुल जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर के पास में था। तो जगन्नाथ मिश्र और जगदीश पंडित बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म जब हुआ तो जगदीश पंडित और दुखिनी देवी, उनके मन में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव बिल्कुल वैसे ही था जैसे जगन्नाथ मिश्र और सची माता का था। बल्कि कभी कभी दुखिनी देवी धात्री भी के रूप में भी निमाय पंडित की सेवा करती थी। और ये लीला आपने अवश्य सुनी होगी कि एक बार श्री निमाय पंडित अपनी बाल लीला में बहुत रो रहे थे। वैसे आमतौर से जब निमाय रोते थे तो आसपास के महिलाएं जब आकर हरिनाम संकीर्तन कहती थी करती थी तो बच्चा रोना बंद करता था। इस तरह से युक्ति से बाल्यावस्था से ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी के मुख से हरि नाम निकलवाया। परंतु इस दिन जितना भी वो संकीर्तन भी क्यों न करें, बाल निमाय अपना रोना नहीं बंद कर रहे थे। और उस दिन एकादशी था, तो बाद में जगदीश पंडित और सची माता ने पूछा बच्चे से कि अरे बच्चा तुमको क्या चाहिए जिसके कारण तुम रोना बंद करोगे अभी? तो बच्चे ने उत्तर दिया कि जगदीश पंडित के घर में भगवान विष्णु को उनके शालग्राम को चावल का भोग चढ़ाया है, तो वो चावल मुझे लेना है। तो अभी उनको आश्चर्य हुआ जगन्नाथ मिश्र को कि सबसे पहली बात कि इस बच्चे को पता कैसे चला कि एकादशी के दिन पर चावल का भोग वहां पे भगवान विष्णु को चढ़ाया जा रहा है और वैसे भोग चढ़ाया भी जा रहा है, तो मैं इस बच्चे को एकादशी के दिन पे चावल का महाप्रसाद कैसे खिलाऊं? क्योंकि महाप्रसाद भी हो फिर भी यदि वो अन्न है चावल आदि है तो एकादशी के दिन पर हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, बाद वाले दिन में ग्रहण करते हैं द्वादशी की तिथि पर। फिर भी जगन्नाथ मिश्र गए जगदीश पंडित के घर में, तो जगदीश पंडित ने जान लिया कि ये बाल गोपाल ही हैं जो निमाय के रूप में आए हैं, और भगवान के लिए तो कोई एकादशी का व्रत नहीं रहता है, वो हम सब के लिए है। तो उन्होंने जगन्नाथ मिश्र से कहा कि बिना संकोच किए हुए आप निमाय को चावल दे दीजिए। तो फिर वो चावल महाप्रसाद दे दिया, और जैसे ही थाली बाल निमाय के सामने रखी गई और चावल मुंह में डाला, उनका रोना बंद हो गया। तो ऐसे भक्त थे ये जगदीश पंडित। तो भगवान जिन भक्तों के साथ में ऐसी लीलाएं करते हैं वो अवश्य कोई साधारण भक्त नहीं हो सकते, उनके साथ में भगवान का आदान प्रदान होता है। और भगवान अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए इन भक्तों की सहायता लेते हैं। भगवान की लीलाएं क्या हैं? ये बहुत ही दिव्य प्रदर्शन है। तो ऐसे दिव्य प्रदर्शन में कोई साधारण व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। तो भगवान अपने बहुत ही निकट के पार्षदों को चुनते हैं। तो भगवान की इच्छा थी जगन्नाथ देव की कि मुझे भी बंगाल में प्रकट होना है। अब जगदीश पंडित वहां सेवा करते रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया तो उन्होंने जगदीश पंडित से कहा था कि आपको प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी आना है। तो प्रतिवर्ष जगदीश पंडित अन्य भक्तों के साथ में बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते थे। चातुर्मास के समय 4 महीने वहां रहते थे और भगवान जगन्नाथ का दर्शन और श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन और संग पाके दिव्य आनंद का अनुभव करते थे और फिर लौट के आते थे। तो कभी कभी जब वो लौट के आते थे तो उनको बहुत विरह का अनुभव होता था। तो एक बार हुआ ये, जब वो लौट के आ रहे थे दर्शन करके तो नव कलेवर का समय था। आप जानते हैं कि नव कलेवर वो समय होता है जब भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा देवी इनके विग्रह बदले जाते हैं। जब पुरुषोत्तम जब अधिक मास आषाढ़ महीने में आता है तो उस समय ये नव कलेवर होता है। इसकी कोई स्थिर अवधि नहीं होती है, कभी 12 साल के बाद, कभी 13 साल के बाद, कभी 19 साल के बाद, इस बार जब हुआ दो बार 19 साल के बाद में हुआ, तो नव दो नव कलेवरों के बीच में ऐसे अंतर होता है। तो खैर उस साल में नव कलेवर होना हो गया था होना था। तो अब जगदीश पंडित वहां दर्शन करके तो आए, तो बहुत ही विरह का अनुभव कर रहे थे भगवान जगन्नाथ के प्रति। इतना विरह तीव्र हो गया था कि वो एक जगह जब रात को रुके थे वो सो नहीं पाए। खैर बड़े मुश्किल से नींद उनको आ गई। जब नींद आई तो उनके सपने में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने कहा कि आपके भाव को मैं स्वीकार करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी सेवा करो, तो आओ वापस जगन्नाथपुरी चले जाओ और मुझे ले जाओ, अपने घर ले जाओ जगन्नाथपुरी से। और ठीक उसी रात को भगवान जगन्नाथ पुरी के राजा के स्वप्न में भी आए और उन्होंने राजा को आदेश दिया कि जगदीश पंडित नाम के एक भक्त बंगाल से मायापुर से आने वाले हैं, तो उनको उनके पास मैं जाना चाहता हूं, जो मेरे जो समाधि स्थल विग्रह हैं उनको जगदीश पंडित को दे देना। अब नव कलेवर के समय क्या होता है कि जो पुराने विग्रह होते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, उनको जमीन में रखा जाता है समाधि, जैसे सन्यासियों को आदि को जो विशेष कोई व्यक्ति होते हैं तो उनको जमीन में रखा जाता है, समाधि की अवस्था में रखा जाता है मृत्यु के बाद प्राण त्यागने के बाद। तो ऐसे भगवान के जगन्नाथ के विग्रहों को भी वहां समाधि में रखा जाता है, इसलिए उनको समाधि स्थ विग्रह कहते हैं। और फिर नए विग्रह तो बनाए जाते हैं, फिर उनकी स्थापना मंदिर में होती है। तो जब जगन्नाथ पुरी लौट के आए जगदीश पंडित, तो राजा ने सारा संदेश सबको दिया था कि जैसे ही जगदीश पंडित नाम के भक्त आएंगे मुझे बताना। फिर राजा ने उनको संदेश दिया कि भगवान जगन्नाथ की इच्छा है कि वो आपके पास में आए। अब ये समस्या हुई जगदीश पंडित के लिए। क्या समस्या थी कि इतने भारी विग्रह हैं, अब मैं अकेले कैसे ले जाऊंगा। आपको पता है कि रथ यात्रा के समय जब पांडु विजय उत्सव होता है, इतने हृष्ट पुष्ट हट्टे खट्टे जो दयित लोग होते हैं, जो पहलवान की तरह होते हैं, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रहों को उठा के ले जाते हैं। उनको भी बहुत कष्ट होता है उठा के ले जाने के लिए, क्योंकि विग्रह इतने बड़े और इतने भारी होते हैं, समय समय पर उनको रुकना पड़ता है। और कई ऐसे दयित लोग उठा के फिर अंततः उनको रथ पे सवार करते हैं। तो अब ये बेचारे एक ब्राह्मण भक्त ये कैसे अकेले इतने बड़े विग्रह को ले जाते। तो फिर जगन्नाथ उनके स्वप्न में पुनः आए कि जगदीश तुम चिंता नहीं करना, मैं बिल्कुल रुई की तरह हल्का हो जाऊंगा, इसलिए तुम्हें मुझे ले जाने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हें क्या करना होगा, मुझे एक रस्सी से एक लकड़ी के अंत में बांध दो और रस्सी का जो दूसरा अंत है तुम्हारे कंधे पे रखो। जैसे पुराने जमाने में लोग जब जाते थे तो एक लकड़ी लेते थे, उसके अंत में उनका सामान रहता था, जो भी थोड़ा बहुत सामान रहता था। तूने कहा ठीक है, तो ऐसे छड़ी लेकर जिसमें जगन्नाथ पीछे थे चले। अब इतने हल्के हो गए थे कि उनको प्राय वजन ही नहीं लग रहा था, परंतु जगन्नाथ भगवान ने कहा कि जहां तुम मुझे रखोगे फिर मैं वहीं पे रहूंगा, वहां से हिलूंगा नहीं। अब इस तरह की लीला भगवत कथा में बहुत सुनाई देता है। कहां पे ऐसे लीलाएं आपने सुनी है? हाँ, गोवर्धन की लीला। गोवर्धन भी वहीं पे चल पड़े जब पुलस्त ऋषि उनको लेकर आए थे, तो गोवर्धन वो वाराणसी ले जाना चाहते थे, तो वहां पे तपस्या करना चाहते थे। वो द्रोणाचल पर्वत के पास गए कि आपके पुत्र को मुझे दे दीजिए, क्योंकि वाराणसी में मैं रहता हूं और वहां पे कोई पर्वत नहीं है, केवल गंगा है, और पर्वत गंगा के तट में हो तो कितना सुंदर होगा, तो मैं वहां तपस्या करूंगा। तो किसी न किसी तरह से वो तैयार हुए और फिर गोवर्धन उसी स्थान में रहे, क्योंकि उस समय अचानक पुलस्त ऋषि को स्नान करने की इच्छा हुई, प्रकृति का बुलावा आया तो उनको जाना पड़ा, और जहां गोवर्धन को नीचे रखा तो वहां से गोवर्धन हिले नहीं। और कौन सी लीला याद आती है, श्री रंगम भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री रंगनाथ श्री रंगम में, जो श्री रामचंद्र के पूर्वजों से, पूर्वज इनकी सेवा करते आए थे, वही विग्रह श्री रामचंद्र ने विभीषण को भेंट में दी थी। विभीषण लेके जा रहे थे, परंतु वैसे ही समस्या हुई जो पुलस्त ऋषि के साथ में हुई, और जहां आज श्री रंगम है वहीं पे वो रुके, विग्रह को नीचे रखा और वहीं पे रह गए। परंतु इतना है कि उन्होंने अपना मुख दक्षिण की ओर रखा, लंका की ओर। तो खैर ऐसे कई बार लीला होती है, तो यहां भी ऐसे ही हुआ। अब उनके साथ में, जगदीश पंडित के साथ में दो ब्राह्मण थे, तो दो ब्राह्मणों के उन्होंने हवाले कर दिया कि रखो नहीं नीचे, तो वो फिर स्नान करने गए गंगा में। लेकिन उस समय जगन्नाथ देव इतने भारी हो गए कि वो ब्राह्मण उसको सहन नहीं कर पाए, वजन को नीचे रखना ही पड़ा। जब नीचे रखा तो वहां से हिले नहीं। तो स्नान करने के बाद जब जगदीश पंडित वापस आए तो उन्होंने समझ लिया कि ये जगन्नाथ की इच्छा है कि वो यहीं पर रहें। फिर वहीं पर उनके लिए छोटी सी कुटिया आदि बनाई और वहीं उनकी सेवा करना प्रारंभ हो गया। अब वो स्थान था एक गांव जिसका नाम था जशोर, और जशोर गांव था और एक स्थान के पास जिसका नाम है, आज है चकदहा। ये वास्तव में प्राचीन स्थान है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने संवर नाम के एक ऋषि का वध इस स्थान में किया था, और इसके पहले भी और भी प्राचीन काल में ऐसे बताया जाता है कि जब भगीरथ महाराज गंगा देवी को लेकर आए थे और वो आगे चलते चलते रथ में जा रहे थे, जब गंगा देवी बहते हुई समुद्र तक पहुंच गईं, फिर बाद में किसी कारणवश महाराज भगीरथ के रथ का चक्र वहां अटक गया, तो उन्होंने वहीं पे जमीन के अंदर रथ को रख दिया, इसलिए उस जगह का नाम हो गया चक्र दह, दहन कर दिया वहां पे चक्र को। तो चक्र दह का अपभ्रंश हो के अभी चकदहा, तो बंगाल में लोग उसे चकदहा कहते हैं। तो वहां पे फिर जगन्नाथ मंदिर बना सुंदर। आगे चल के और बहुत सारे लोग आए, बहुत जमीन का दान लोगों ने दिया भगवान जगन्नाथ के सेवा के लिए। पुराने जमाने में ऐसे होता था, जब भी कोई मंदिर होता था तो मंदिर की या भगवान की सेवा के लिए, ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए जो वहां सेवा करते थे, बहुत सारी जमीन हुआ करती थी। तो इस जमीन से जो भी अनाज आदि का उत्पादन होता था उससे सेवा आदि चलती थी, तो ब्राह्मणों को भी वो अन्न आदि दिया जाता था, और तनखा आदि की जरूरत नहीं होती थी। आजकल के जमाने में तनखा वगैरह की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से बहुत सी जमीन वहां पे आ गई। परंतु आगे फिर कलयुग प्रारंभ हो गया, आगे और कलयुग बढ़ता गया ना, तो वहां पे जो सेवा करने वाले भक्त थे उनको मंदिर के खर्चे वगैरह करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उनको जमीन बेचना पड़ा। तो धीरे 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 से जमीन बेचे गए। आज हम देखते हैं कि कितने सारे प्राचीन मंदिर हैं जिनके सारे जमीन सेवायतों ने बेच दिए हैं सब। वृंदावन में भी कितनी बड़ी समस्या है, जगह जगह यहाँ पर भी हम देखते हैं पुराने जो मंदिर हैं, जो उससे संबंधित जो जमीन थी वो सब धीरे धीरे से पीढ़ियों ने बेच दिए। फिर अंततः वहां पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हाथ में शायद वो आए, और या तो उनके शिष्य भक्ति दैत माधव महाराज के हाथ में आए, फिर वो गौड़ी मठ के हवाले आ गया। फिर शायद अभी चैतन्य गौड़ी मठ का एक मंदिर है, वहां पे हम दर्शन करने गए थे एक बार जब मायापुर गए थे। बहुत ही सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह हैं। रथ यात्रा तो नहीं होती है वहां पर, परंतु तो स्नान यात्रा बड़े धूमधाम से होती है। तो आज भी ये विग्रह वहीं पर हैं और उनकी सेवा होती है। तो ये जगदीश पंडित द्वारा स्थापित विग्रह है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा वो जगन्नाथ भगवान के विग्रह का जो कि राजापुर में विराजमान है। राजापुर कहाँ है? मायापुर के पास में। आप सब अवश्य मायापुर गए हैं। आप में से कितने भक्त मायापुर नहीं गए हैं आज तक, हाथ ऊपर कीजिए। अरे इतने सारे भक्त। तो खैर इस साल तो यात्रा हमारी मायापुर में होगी, तो आप में से जो भक्त नहीं गए हैं मायापुर, इस वर्ष अवश्य आप आइए, और जो गए हैं आप भी आइए। तो जब मायापुर जाएंगे तो उस समय राजापुर भी जाएंगे। तो मायापुर से थोड़ी दूरी पर ये गांव है, आज उसका नाम है राजापुर। आपको पता है कि वो सारा मंडल जो है उसको नवद्वीप मंडल कहते हैं, नौ द्वीपों का मंडल। और ये नौ द्वीपों में से मायापुर जहां है वो है अंतरद्वीप। फिर अलग अलग द्वीप हैं जैसे गोद्रुम द्वीप इत्यादि। तो ये नौ द्वीप नवविधा भक्ति के एक एक अंगों के प्रतीक है। वैसे एक अंग है, ये एक द्वीप है, सीमंत द्वीप। सीमंत द्वीप इसलिए नाम रखा गया क्योंकि माया देवी का एक नाम है सीमंतिनी देवी, और इस स्थान पर सीमंत जहां आज सीमंत द्वीप है वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने माया देवी सीमंतिनी देवी के ऊपर कृपा की थी। तो सीमंतिनी देवी के पीछे इस द्वीप का नाम रखा गया सीमंत द्वीप। तो वहां ये राजापुर है। तो हुआ ये कि वहां पे एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम भी जगदीश था। इसके पहले और भी प्राचीन कथा है, जगदीश जी बाद में आएंगे, और इसका वर्णन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने नवद्वीप महात्म्य में कहते हैं, बताते हैं कि ये सातवें शताब्दी की बात है। सातवें शताब्दी अर्थात आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व। तो उस काल में एक उड़ीसा और बंगाल में एक बहुत ही दुष्ट असुर रहा करता था जिसका नाम था रक्तबाहु। वो भगवान में विश्वास नहीं करता था और भगवान के विग्रहों को भी नहीं मानता था, और उसका एक ही उद्देश्य था कि कैसे भगवान के मंदिरों को उनके विग्रहों को नष्ट किया जाए। जो ऐसे जगह जगह जाके मंदिरों को तोड़ रहा था वो, तो उसने ये भी ठान लिया कि जगन्नाथ का बहुत बड़ा मंदिर है पुरी में, तो जब तक इस मंदिर को मैं तोड़ूंगा नहीं मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको चैन की नींद नहीं होती है जब तक वो अच्छी तरह से भगवान की सेवा ना करें, परंतु जो दुष्ट लोग होते हैं उनको चैन की नींद तब तक नहीं आती है जबकि वो भगवान और उनके भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो ये अंतर होता है भक्तों में और असुरों में। तो जब जगन्नाथ पुरी तक खबर पहुंची कि ये रक्तबाहु नाम का असुर अब जगन्नाथ पुरी के पास आ रहा है, तो सारे भक्त वहां पे बहुत भयभीत हो गए, तो सीधे वो जगन्नाथ देव के पास में गए मंदिर में और बहुत तीव्रता से प्रार्थना करने लगे भगवान जगन्नाथ से कि आप ही बताइए कि आप ही सक्षम हैं इस असुर को दूर रखने के लिए, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, यह आक्रमणात्मक भाव से यह आ रहा है जगन्नाथपुरी की ओर, तो इसके लिए क्या उपाय है आप ही बताइए। तो जगन्नाथ देव ने उन भक्तों से कहा कि सुनो, क्या आप नहीं जानते हो कि मैं जगन्नाथ हूं, मैं सक्षम हूं मेरी रक्षा करने के लिए और मेरे मंदिर की रक्षा करने के लिए और मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। कौन मेरे विग्रह को तोड़ सकता है, कौन मेरे मंदिर को तोड़ सकता है? अब ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि यदि भगवान अपने विग्रह से अभिन्न है तो ऐसे कैसे संभव है कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति आके उनके मंदिर को कुछ तोड़े या उनके विग्रह को हानि पहुंचाए? इतिहास में ऐसे घटनाएं हुई हैं, कितने ऐसे दुष्ट राजा हुए हैं जिन्होंने आक्रमण यहां वहां किया है, मंदिरों को तोड़ दिया है, तो ऐसे क्यों होता है? तो क्या इसका मतलब है कि भगवान नहीं है, या तो फिर क्या इसका मतलब है कि भगवान अपने विग्रह से भिन्न है? हम जो बोलते हैं कि भगवान उनके विग्रह से भिन्न नहीं है, यह सत्य नहीं है। यदि वो भगवान होते तो अवश्य अपने आप की रक्षा कर सकते थे, परंतु रक्षा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो विग्रह से भिन्न है, या फिर हो सकता है कि भगवान है ही नहीं। तो ऐसे भी संशय हो सकते हैं लोगों के मन में। तो भगवान जगन्नाथ ने इस संशय का निवारण भी किया। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि देखो, मैं भगवान हूं, मैं कोई साधारण मनुष्य हूं क्या? क्या मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता? मेरे मंदिर की आप सबकी रक्षा नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता हूं, परंतु आप सबकी भक्ति को मैं बढ़ाना चाहता हूं। मेरे मंदिर की रक्षा करने के लिए मेरी इच्छा ही पर्याप्त है। मेरी इच्छा मात्र से जितने भी दुष्ट और असुर लोग हैं वो सब दूर ही रहेंगे, मंदिर के पास भी नहीं आ पाएंगे। तो मंदिर को तोड़ने की बात तो दूर रही, परंतु मेरे भक्तों के स्नेह को, प्रेम को मैं बढ़ाना चाहता हूं, मेरे भक्तों को मेरी सेवा में मैं लगाना चाहता हूं, इसलिए ये सब लीलाओं को मैं होने देता हूं, इन कार्यों को होने देता हूं, मैं अनुमति देता हूं। तो इसलिए हालांकि मैं पूरी तरह से सक्षम हूं, समर्थ हूं, फिर भी मैं आपको यह आदेश देता हूं कि मेरे मंदिर की रक्षा करने के लिए आप मुझे किसी दूसरे स्थान में ले जाओ और मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूंगा कि किस दिशा में जाना है, लेकिन आप जंगल के रास्ते से जाना, मुख्य रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि मुख्य रास्ते से रक्तबाहु आ रहा है अपनी सेना को लेकर, इसलिए दूसरे रास्ते से, जंगल के रास्ते से जाना। इस तरह से भगवान ऐसी लीला करते हैं, क्योंकि भगवान अर्चन विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं नास्तिकों के लिए नहीं, दुष्टों के लिए और असुरों के लिए नहीं। वो असुरों को और नास्तिकों को साबित करने नहीं आते हैं कि मैं हूं और मैं विग्रह से भी अभिन्न हूं, ये साबित करने के लिए नास्तिकों के लिए भगवान प्रकट नहीं होते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। अर्चा विग्रह की का प्राकट्य है ये केवल मात्र भगवान के भक्तों के लिए है। भगवान दुष्टों का सोचते नहीं है जब वो अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। भले नास्तिक लोग जो भी सोचें, जो भी कहें, जो भी आरोप लगाएं, निंदा करें, करने दो उनको,
जितना वो लोग निंदा करेंगे उतना ही उनको प्रकृति के नियमों से के द्वारा दंड मिलेगा, उनको भी नरक में जाना पड़ेगा। तो भगवान उनकी परवाह नहीं करते हैं। और जब विग्रह का जो प्राकट्य है वो केवल भगवान के भक्तों के लिए है, ताकि भगवान और उनके भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान हो और सुंदर लीलाएं प्रकट हों, जिनसे कि भक्तों के भक्ति के रस की वृद्धि हो और आने वाले अनेक पीढ़ियों में इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन हो, जिससे कि आने वाले भक्त हैं वो भी भक्ति के समुद्र में डूबे और आनंद का स्वाद लें। इसलिए भगवान ऐसे अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। जब भक्त लोग भगवान के बारे में चिंतित होते हैं तो उनकी भक्ति बढ़ती है। रविवार को भी हम चर्चा कर रहे थे ना कि भक्तों के मन में भी भगवान की सेवा के प्रति चिंता होती है, और कभी कभी भगवान अपने भक्तों को जानबूझकर ऐसे चिंता या भय की अवस्था में डालते हैं, जिसके द्वारा उनके हृदय में थोड़े बहुत जो भी कलमश बचे हुए हों, अनर्थ बचे हुए हों, वो भी नष्ट हो जाते हैं उस चिंता या भय के कारण। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्तों के हृदय में भगवान की सेवा के प्रति जो चिंता होती है वो दिव्य होती है, वो साधारण भौतिक चिंता नहीं होती है। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के ऐसे चिंताजनक अवस्था में डालते हैं कभी कभी, ताकि उनका शुद्धिकरण संपूर्ण हो जाए। वैसे भी भक्तों का हृदय शुद्ध होता है, परंतु भौतिक जगत में इतने जन्मों से रहने के कारण कलमश बहुत इकट्ठे हुए होते हैं उनके हृदय में, और कहीं यहां वहां हृदय के कोने में कुछ कलमश बच भी गया हो लेश मात्र, उसको भी स्वच्छ करने के लिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। और इतना ही नहीं, शुद्ध हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का प्राकट्य होता है। जिस हृदय में अनर्थ भरे हुए हैं ऐसे हृदय में प्रेम कैसे उदित हो सकता है? प्रेम के उदय के लिए ये अनिवार्य है कि हृदय शुद्ध हो। तो हृदय को तैयार करने के लिए, पूरी तरह से साफ करने के लिए ऐसे भगवान के भक्तों के लिए भगवान योजना बनाते हैं। तो खैर, फिर भगवान जगन्नाथ के आदेश के अनुसार ये दैत्य लोग जो थे, जो बड़े हृष्ट पुष्ट होते हैं, उन्होंने जगन्नाथ भगवान का विग्रह उठाया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अब ऐसे तो वर्णन नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे बात नहीं कहते हैं कि वो विग्रह बहुत हल्का हो गया, ऐसे हो भी सकता है लेकिन ऐसे बताते नहीं है। जगदीश पंडित के साथ जैसे हुआ, शायद इनके साथ ऐसे नहीं हुआ, परंतु ये लोग तो दुबले पतले ब्राह्मण नहीं थे, ये लोग तो हृष्ट पुष्ट दैत्य थे, और ये लोग विशेष सेवा करते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय और अनवसर के समय। तो ये लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रहों को उठाकर ले गए साथ में, और जल्दी जल्दी से जंगल के रास्ते से होकर चल पड़े। तो चलते चलते फिर कभी कभी वो रुक जाते थे, वहां विश्राम करते थे रात को, और जो भी वहां जंगल में फल कंद मूल आदि जब मिलता था वो भगवान जगन्नाथ को भोग देते थे। और इस तरह से फिर वो दिन के समय चलते थे, रात को विश्राम करते थे, फिर अगले दिन चलते थे, फिर रात को विश्राम करते थे। ऐसे पूरे 12 दिन बीत गए। ऐसे चलते चलते उन्होंने सोचा कि अब हम चलो काफी दूर पहुंचे हैं, अभी इस स्थान में कोई खतरा नहीं है हमारे लिए और भगवान के लिए भी। और वो सीमंत द्वीप ही था जहां वो आप पहुंचे 12 दिन के बाद। तो सीमंत द्वीप में आप पहुंच के वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के विग्रह को स्थापित किया, और वहां भगवान जगन्नाथ की सेवा प्रारंभ हो गई। तो बड़े आनंद से ये सारे जो दैत्य थे, शबर शबर वंशी है ना, ये सब विश्वावसु के वंशज हैं, तो बड़े आनंद से ये सेवा कर रहे थे। तो ऐसे कई वर्ष बीत गए, इनकी कई पीढ़ियां भी बीत गईं। अंततः ऐसे हुआ कि फिर वो सेवा खत्म हो गई, कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो गई, फिर शबर वंशों में कुछ हो गया होगा। आज भी वो स्थान है राजापुर के पास में जिसको शबर डांगा कहते हैं, जहां पे ये शबर लोग निवास करते थे जब वो कि वो पुरी से आए थे, लेकिन वहां पे उनके वंशज कोई रहते हैं या नहीं रहते हैं ये पता नहीं। तो वहां पे जगन्नाथपुरी में सीमंत द्वीप में फिर भगवान जगन्नाथ की सेवा हुई, प्रारंभ हो गई। फिर कुछ हुआ, जैसे साल बीत गए, काल के प्रभाव से शबरों के जो वंशज थे, हो सकता है उन्होंने सेवा करना बंद कर दिया होगा, जो भी हो, फिर भगवान की सेवा हुई नहीं। फिर वो जो मंदिर बनाया था उन्होंने, वो भी लुप्त तो हो गया, वहां भी मिट्टी आदि सब आ गया, मिट्टी से भर गया, और कोई देख भी नहीं पाया। मंदिर था, विग्रह थे, कुछ नहीं था वहां पे। और फिर जगन्नाथ देव ने ठीक समझा कि अब मैं सबके सामने प्रकट अवस्था में नहीं रहूंगा, तो प्रकट रूप में नहीं रहे, अप्रकट हो गए, परंतु जगन्नाथ देव वहां से चले गए, नहीं गए, वहीं पे रहे। वो राह देख रहे थे कि किसी दूसरे रूप में मैं अवश्य यहां पर प्रकट हो जाऊं पुनः। तो किसी योग्य भक्त को निमित्त बनाना चाहते थे। तो ये जो कथा है रक्त बाहु से संबंधित, देखिए रक्त बाहु का नाम भी हम लोग ले रहे हैं, तो ये लोग भी जब आते हैं इनका नाम भी रह जाता है, भक्तों के साथ साथ में भगवान के साथ में असुरों के नाम को उच्चारण भी हमको करना पड़ता है। तो ये सातवें शताब्दी की बात है। धीरे 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 से जब भगवान जगन्नाथ वहां से अप्रकट हुए तो बात आई अब 16वीं शताब्दी में, तो लगभग 900 साल के बाद। अब तक भगवान जगन्नाथ प्राय पूरी तरह से अप्रकट हो गए थे, किसी को पता भी नहीं था कि यहां पे भगवान जगन्नाथ थे पहले और यहां उनकी सेवा होती थी। अब सीमंत द्वीप में ये जगदीश गंगोपाध्याय नाम के एक भक्त रहते थे, ये भी प्रतिवर्ष जाया करते थे जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए भगवान जगन्नाथ का। और वृद्ध अवस्था में भी इन्होंने ये छोड़ा नहीं, रोज जाया करते थे। तो जब वो एक बार थे तो उस समय एक साल जब जाने के लिए समय हुआ, उसके थोड़े समय पहले उनको बहुत बड़ी बीमारी हुई, और ये रोग ऐसा था कि वो पूरी तरह से अंधे हो गए। जब अंधे हो गए तो उनके मन में ये विचार आया कि अब मैं कैसे जाऊंगा अकेले, इतने दूर सीमंत द्वीप से लेकर जगन्नाथपुरी में जाना इतना आसान तो नहीं है, कैसे जाएं। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है जो अन्य भक्त यहां से जाएंगे जगन्नाथपुरी, वो मुझे साथ में लेकर जाएंगे। लेकिन अन्य भक्तों ने आपस में विचार विमर्श किया कि भाई हमारे लिए एक अंधे आदमी को ले जाना बहुत खतरा है, ऐसा नहीं है कि किसी गाड़ी में या हवाई जहाज में बिठा दिया और हम पहुंच गए। कई दिन लगते थे पैदल चलते चलते, जंगल में से जाना पड़ता था कभी, अब कौन संभालेगा इनको, कौन लेकर जाएगा। तो सभी ने हाथ ऊपर कर दिए कि हम आपको नहीं साथ में ले जा पाएंगे, तो बहुत दुखी हो गए। तो उस समय वो बहुत शोक कर रहे थे। तो उस रात में भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए और कहा कि देखो जगदीश, तुम रोज प्रातः काल में गंगा में स्नान करने जाते हो, तो इस बार जब तुम गंगा में स्नान करने के लिए जाओगे तो एक काष्ठ आएगा। काष्ठ अर्थात जो लकड़ी है, जो वृक्ष का, वृक्ष की लकड़ी है, वो आके तुम्हारे सर को टकराएगी, स्पर्श करेगी। तो उस काष्ठ को लेना और मेरा विग्रह बनवाना, जगन्नाथ का विग्रह बनवाना। किन के पास बनवाना? जो एक सुतार है, जो जिसका कुष्ठ रोग हुआ है, जिसकी उंगलियां वगैरह सब खराब हो गई है, नाक गिर गया है, ऐसे एक सुतार है, उसको ढूंढो और उससे मेरा विग्रह बनवाओ। तो फिर अगले दिन सुबह ये जगदीश जो है, ये चले गए, गंगा में स्नान कर रहे थे, और जैसे कि भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में कहा था, ठीक वैसे ही हुआ। एक काष्ठ आकर उनके सर को टकराया और उन्होंने उस काष्ठ को लिया और लेकर फिर वो गांव में आए। वो ढूंढ रहे थे इस गांव में, पास वाले गांव में, जहां भी कोई ऐसे सुतार हो जिसको कुष्ठ रोग हो गया हो। बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद आखिर वो व्यक्ति मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि आपके लिए एक सेवा है, ये भगवान जगन्नाथ का आदेश है। तो उन्होंने जो स्वप्न में देखा था उसका वर्णन किया और फिर बताया कि आपको इस काष्ठ से एक विग्रह बनाना है भगवान जगन्नाथ का। तो सुतार ने कहा, ऐसे तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, देखो कुष्ठ रोगी हूं मैं और मेरे उंगलियां भी नहीं है, उंगलियां आधी आधी कट गई हैं, गिर गए हैं मेरे, और यहां से खून और पस आदि बह रहा है, अब मैं कैसे करूं, और उंगलियों को प्रयोग करने से भी मुझे बहुत दर्द होता है, तो मुझसे नहीं होगा। ये साफ मना कर दिया। परंतु ये जगदीश गंगोपाध्याय को आदेश मिला था भगवान जगन्नाथ से कि ऐसे होना है, तो दोनों के बीच में बहस होने लगी वहां, उस उतार और ये जगदीश गंगोपाध्याय के बीच में। आखिर मान गए वो सुतार, उन्होंने सेवा शुरू की भगवान जगन्नाथ का विग्रह बनाने के लिए उस काष्ठ से। और इतना दर्द हो रहा था और खून भी बह रहा था, तो हाथ धोकर आते थे, फिर से करते थे, दर्द बहुत हो रहा था। तो ये देख रहे थे जगदीश गंगोपाध्याय सतत उनके साथ में बैठते थे कि आप करो, हम आपके साथ में बैठते हैं, आपसे हट के हम नहीं जाएंगे। और उनके दर्द को कम करने के लिए वो भगवान जगन्नाथ की कथाएं उस सुतार को सुनाते रहते। तो जैसे जैसे उस सुतार भगवान जगन्नाथ का विग्रह बना रहे थे उस काष्ठ से, तो जगदीश गंगोपाध्याय के मुख से जगन्नाथ लीला भी सुन रहे थे। तो ऐसे बड़े कठिनाई से उन्होंने किसी न किसी तरह से विग्रह को बना दिया। और फिर जगदीश गंगोपाध्याय के स्वप्न में पुनः भगवान आए, उन्होंने कहा कि ये नीम के वृक्ष हैं, इनसे बलदेव और सुभद्रा के विग्रह भी बनवाना। फिर वो भी बनवा लिए और फिर उनकी स्थापना हुई। तो ये 16 शताब्दी की बात है, अर्थात आज से लगभग 500 साल पूर्व। फिर वहां जगदीश गंगोपाध्याय के कर कमलों द्वारा सेवा बहुत अच्छी तरह से भक्ति भाव से होता रहा। ऐसे कई पीढ़ियां बीत गईं और उनके जो वंशज थे वो भी सेवा जारी रख रहे थे। परंतु हुआ ये कि आगे चल के उनके वंशजों में भी सेवा करने की उत्साह कम हो गई। तो एक बार हुआ ये कि वहां पे ये मंदिर ऐसे ही रह गया और जगन्नाथ भगवान वहां तो थे परंतु सब कुछ सेवा अच्छी तरह से ठीक से नहीं चल रहा था। तो वहां के जो निवासी थे वो एक बार आए और उन्होंने देखा कि यहां से कोई एक पहाड़ जैसा है, यहां पे मिट्टी वगैरह है, परंतु यहां से ऐसे आवाजें आ रही हैं, क्या है ये? तो वहां के लोग थे, तो वहां जगन्नाथ ने उनके सामने आवाज दी, उठाई और आवाज कहा कि देखो, ये गंगोपाध्याय परिवार में अभी इनके जो वंशज हैं, वहां एक महिला है, ये बहुत ही चरित्रहीन है और उसने मेरे प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, तो सबकी मृत्यु होने वाली है, उनकी भी मृत्यु होगी, सारे गंगोपाध्याय परिवार की, और आप सब गांव वालों की भी मृत्यु होगी। यदि आप सब मृत्यु से बचना चाहते हो तो आपको गांव छोड़ के जाना है। तब गांव के निवासी गए गंगोपाध्याय के घर में, देखा कि सारे के सारे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब सब लोग डर गए, तुरंत गांव छोड़ के सारे गांव के निवासी चले गए। तो वहां पे भगवान जगन्नाथ के प्रति इतना घोर अपराध जो भी हुआ होगा, क्या अपराध हुआ जगन्नाथ ने उनको बताया नहीं, तो अपराध जो हो गया था, तो अब भगवान जगन्नाथ की सेवा बंद हो गई उस समय भी। तो ऐसे पीढ़ियां कई बीत गई, फिर से जगन्नाथ अप्रकट हो गए। अब आई 20वीं शताब्दी की बात, लगभग 1960 के करीब ये था। तो उस समय जैमिनी घोष नाम के एक व्यक्ति थे, जो पास वाले गांव बहादुरपुर से कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो अचानक उनके सामने से एक बड़ा वृक्ष गिर गया। तो बड़ा वृक्ष गिर गया तो उन्होंने सोचा कि भूत का काम है, क्या है, तो बेहोश होकर गिर पड़े। तो उधर भगवान जगन्नाथ और जैमिनी घोष के सामने आ गए, उनके स्वप्न में आए, कहा कि नहीं, मैं यहां प्रकट हूं, वो मुझे प्रकट कराना। तो जैमिनी घोष ने थोड़ी पूछताछ की, ये जमीन किसकी है? तो फटिक चट्टोपाध्याय नाम के एक व्यक्ति थे, उनके पास गए कि देखो, ऐसे ऐसे आवाजें हमने सुनी, यहां से आवाज आती है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। तो सारे जो गांव वाले थे वो भी कहते थे, हाँ हम लोग आवाज सुनते हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कोई भूत है, क्या है, और वहां बहुत जहरीले सांप भी होते हैं, इसलिए हम यहाँ पास में भी नहीं जाते हैं। तो फटिक चक्रवर्ती फिर चट्टोपाध्याय वहां पर आए, और उन्होंने सोचा कि चलो फिर ये जो सारा मिट्टी है, छोटा सा पहाड़ जैसे है, इसको निकाला जाए। फिर जब वो निकाला गया, देखा कि यहां तो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह हैं, और इतने वर्षों से वो मिट्टी के नीचे हैं, फिर भी जो दीमक आदि है ने लकड़ी के ऊपर, काष्ठ के ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचाई है, जैसे थे वैसे ही है, थोड़ी बहुत मरम्मत करनी पड़ी उनको, तो वो भी मरम्मत कर ली और फिर विग्रह की स्थापना कर ली। फिर इस तरह से पुनः भगवान जगन्नाथ देव वहां पे प्रकट हो गए उसी स्थान में। अब उस गांव का नाम राजापुर था। फिर ऐसे हुआ कि ये फटिक चक्रवर्ती या चट्टोपाध्याय भी वृद्ध हो गए। सन 1978 की बात है। अब 20 साल तक उन्होंने सेवा तो की थी भगवान जगन्नाथ की, परंतु अब उन्हें पता चल रहा था कि हमसे सेवा नहीं हो पा रहा है, शायद हमारे वंशज भी ठीक से सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ये इतने प्राचीन मूर्तियां हैं, तो अवश्य पहले किसी ने सेवा की थी, पर उनके वंशजों ने सेवा बंद कर दी होगी, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो और मेरे बुढ़ापे में मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं ठीक से। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ मायापुर के भक्तों से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मुझे ये मंदिर आपको दान में देना है, आप कृपया इसे स्वीकार कीजिए। तब 1978 में, अर्थात आज से लगभग 40 साल पूर्व, ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत के संघ के हवाले में आ गया, और उस दिन से अब हमारे संस्था के भक्त ही वहां पर सेवा करते हैं। तो राजापुर स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, वो जो मूर्ति है, वो जो स्थान है, बहुत ही प्राचीन है, बहुत सी लीला पहले से हुई है वहां पर, भगवान जगन्नाथ पुरी से आके यहाँ सीमंत द्वीप में प्रकट हुए। तो 7वें शताब्दी से लेकर 15वें शताब्दी से लेकर 20वें शताब्दी में कैसे कैसे लीलाओं क्या लीलाएं प्रकट होती गईं वो हमने संक्षेप में अभी चर्चा की। और उसके बाद में जब से कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के पास ये विग्रह और ये मंदिर आ गया तब से भी बहुत सी लीलाएं हुई, तो उनकी थोड़ी चर्चाएं हम कल करेंगे कि पिछले 40 सालों में भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों के साथ में और कभी कभी अभक्तों के साथ में भी कैसे लीलाएं की हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा।